वर्तमान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे इस समय साथ मैं निकांक्षित निसंकित अंग की चर्चा चल रही है पर 229वीं गाथा की चर्चा अर्थापन कर रहे थे। समय सार अनुशीलन पर 316 पृष्ठ पर कांजी स्वामी इस बारे में क्या कहते हैं वो चर्चा चल रही थी। किस बारे में? इसमें लिखा है कि चारों ही बंध के कारणों को छेद कर। तो अब चारों ही बंध के कारण सम्मा दर्शन हुआ है चौथे गुणस्थान में, तो उनको कैसे छेदे जा सकते हैं ये शंका का विषय है। निष्कर्ष तो अपना समय सार में आ गया है आत्मख्याति टीका के आधार पर, फिर भी जयसेन ने क्या कहा, जयचंद ने क्या कहा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो बात चल रही है। असलियत में जो अपन ने जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ा था वो आचार्य जयसेन की टीका के आधार पर था। है आप कुछ के नहीं, देखो पेज नंबर 316 के ऊपर, 315 के नीचे की पैरा पड़ा था, नीचे का पैरा। इस गाथा व टीका का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं। देखो निकालो, वो बड़ी किताब में नहीं छोटी किताब में। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता, इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिल जाते हैं। ये जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा था। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं। वे चार पादों के नाम भी गिना देते हैं जो इस प्रकार है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में कर्म बंध मोह करे पद है, जिसका अर्थ आत्मख्याति में कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादि भाव किया है, भाव अर्थ किया है। तात्पर्य यह है कि आत्मख्याति में मोह का अर्थ शंका किया है, जो निसंकित अंग के प्रकरण होने से उचित है। मोह करे शब्द है ना, तो शंका करे अर्थ किया है। अब इस बात का रहस्य स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो अब यहां से अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, वैसे एक प्रश्न स्पष्टीकरण पढ़ लिया था, प्रश्न चल रहा था, फिर भी एक दफा पढ़ लेते हैं क्योंकि अच्छों अच्छों को याद नहीं रहता है, ऐसा प्रकरण है। मैं कर्म से बंधा हूं ऐसा मानना ही संदेह या शंका नामक दोष है। अपन तो संदेह, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, अथवा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे शंका है, या तो संदेह या शंका करते हैं। लेकिन यहां कहते हैं वो कि बस मैं कर्म से बंधा हूं, ये विपरीत मान्यता का नाम ही शंका है। मैं तो कर्म व राग किसे संबंध से रहित अवध मुक्त स्वरूप ही हूं, ऐसा मानना व अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। दूसरे तरीके से कहें तो मेरा स्वद्रव्य कर्म के संबंध में है, ऐसा संदेह ज्ञानी को नहीं होता। माने मान्यता ऐसी, उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती, माने उसको ऐसा विकल्प भी नहीं आता कहने का मतलब, क्योंकि वह जानता है कि एक ज्ञायक भाव में स्वद्रव्य में कर्म व रागादि है ही नहीं, एक ज्ञायक भाव स्वयं सदा पर के संबंध से रहित ही है। यहाँ मिथ्यात्वादि में आदि शब्द से अविरति कषाय योग के परिणाम ग्रहण किए हैं, उनमें मूल तो मिथ्यात्व तो ही है, क्योंकि मूल तो मिथ्यात्व से मिथ्यात्व तो गया है चौथे गुण स्थान में, लेकिन ये चारों को भी शामिल कर लिया है। तो क्या समकृति उक्त चारों ही प्रत्ययों का अभाव है समकृति के? यहां से अपन को बात चलानी थी, इतनी बात कल हो गई थी। कहां चारों का ही अभाव है? मूल गाथा में ही कहा है ना कि चत्तारिवि पाये छिन्नदि, अर्थात जो मिथ्यात्व आदि चार ही पादों को छेदता है वह निसंकित सम्यक दृष्टि है। और मूल गाथा में क्लियर ये बात लिखी है कि चार पायों को छेदता है। इनने तो उल्टा ये कहा कि मुख्य तो मिथ्यात्व ही है और चार उसमें शामिल कर लिए हैं। उसमें विशेषता यह है कि एक ज्ञायक भाव मयत्व की दृष्टि में राग का संबंध है या कर्म का संबंध है, ऐसी शंका करने वाले मिथ्या भाव का ही अभाव है। मैं त्रिकाली जो भगवान आत्मा में ये बंध के चारों पाए नहीं है, बंध कर्म ही नहीं है, कर्म बंध ही नहीं है, तो उसके कारण कैसे होंगे? तो प्रश्न, यहाँ चारों ही प्रत्ययों का जो अभाव कहा है, स्वयं अभाव द्रव्य में है कि पर्याय में? क्योंकि कह रहे हैं त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, है ना? इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया, भाई पर्याय में अभाव है, मैंने उस मिथ्यात् संबंध में रूप श्रद्धा हुई ना, तो श्रद्धा नाम की पर्याय में अभाव है, मतलब ये कह रहे हैं। मिथ्यात् अवृत्ति कषाय प्रयोग, इन चारों का ज्ञानी के अभाव है, क्योंकि उनमें से एक भी वस्तु पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में नहीं है। फिर तर्क वही दे दिया, कौन सा? कि आत्मा में नहीं है ये चारों में से एक भी वस्तु, तो तुम तो कह रहे पर्याय में नहीं है, और वहां कह रहे त्रिकाली आत्मा में नहीं है, तो भ्रम खड़ा होता है ना। इसलिए प्रश्न किया था कि द्रव्य में नहीं है कि पर्याय में नहीं है। तो कहते जिसने अपने आत्मा में अपनापन किया है, इन चारों से रहित आत्मा में अपनापन किया है, तो उस ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में नहीं है, इसलिए पर्याय में नहीं है, मैंने उसकी मान्यता में ही नहीं है कि ये मैं हूं। जैसे अपन बोलते चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त हो गया, मैंने दृष्टि से अब कर्म उसके हैं ही नहीं, कोई रहा ही नहीं है ना। शुद्ध चैतन्य रूप की दृष्टि में मिथ्यात्व आदि चारों ही नहीं है। बापू बहुत सूक्ष्म बात है, यहां तो आचार्य ने केवली भगवान का पेट खोल कर रख दिया है। यह पहली निसंकित अंग की गाथा बहुत ही ऊंची है। मैं एक चैतन्य स्वरूप अवध स्पष्ट मुक्त स्वरूप ही हूं, जहां ऐसा भान हुआ वहां मैं बना हूं, ऐसी शंका रहती ही नहीं है, क्योंकि वहां शंका उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। अभी ये बात जो मैंने बोला ना, इसमें बराई की ओट में पहाड़ है, वो ये कह रहा श्रद्धा में इसे ये बात खत्म हो गई है कि मेरे में ये है ही नहीं, ये बंध का कर्ता मैं हूं ही नहीं। और उसमें ये बार बार कहते हैं ना कि इसे निसंकित अंग क्यों कहते हो इसे, तो वो कह रहे कि उसके चित्त में ऐसी शंका ही कभी नहीं होती कि मैं इनसे बना हूं। अपन कहते विकल्प ही नहीं उठता, हमारे तो दिमाग में ये बात नहीं आई, अपन कहते हैं क्या? कोई आदमी किसी को भड़का है कि तू अपने भाई का गुलाम है, वो जो कहते वो तू करता है, तो वो कहता है कि मुझको तो आज तक विकल्प में भी ये बात नहीं आई है?
کیا؟
کہ میں یہ غلامی ہے اور میں غلام ہوں. وہ سید بھاو سے میرے ہت کے لیے جو کرنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں اور میں کرتا ہوں. تو مجھے یہ وکلپ ہی نہیں آیا کہ یہ غلامی ہے. میں تو یہ سمجھا کہ یہ مارگ درشن ہے اور اسی وجہ سے میں اپنے ہت میں پروت ہو سکا ہوں. کیونکہ یدی بے مجھ کو نہیں بتاتے تو یہ کروں کہ نہیں کروں اس کا نرنے مجھے کرنا پڑتا اور اس میں بہت وکلپ جال کھڑا ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نرنے کر پاتا یا نہیں کر پاتا. اب مجھے اس کے معاملے میں کوئی ماتھا مارنا ہی نہیں پڑا. اور گرو نے بتا دیا, بھائی نے بتا دیا, پتا جی نے بتا دیا, یہ کرو یہ اچھا کام ہے, میں نے کر لیا. یہ دن نہ رات ہوتا ہے نا. کیوں؟ یہ شیئر خریدنے والے وہ کہتے ہیں میں تو پوچھ لیتا ہوں, جو دن نہ رات شیئر کے کیڑے ہیں لگے رہتے ہیں, وہی وہی دھندا کرتے ہیں, تو ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی صاحب ابھی کون سے شیئر خریدنا چاہیے, کون سے بیچ دینا چاہیے. اب وہ مجھے ایک سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں, میں خرید لیتا ہوں, بیچ دیتا ہوں. تو اس میں مجھے کبھی غلامی کا فیلنگ ہوا ہی نہیں کہ میں ان کی بات مان کر شیئر خریدتا اور بیچتا ہوں تو یہ میرا اہت ہوا ہے. اس سے میرا جتنا بھی ہت ہوا ہے ہت ہی ہوا ہے. تو مجھے اس میں کبھی غلامی فیل ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ اس کے کیڑے ہیں, وہ دن رات اسے دیکھتے ہیں. کدا نقصان بھی ہو گیا تو وہ بھگوان تو ہے نہیں, کیبل گیانی تو ہے نہیں, انہوں نے خود بھی کیا تھا. دیکھے تھے میں نے 1000 شیئر خریدے ہیں اور میں نے اس کے ساتھ 5 خریدے تھے. تو انہوں نے اتنا ماتھا لگایا تھا نا, تو اس میں غلامی کہاں ہو گئی بولیے. یعنی کوئی جو وشیشج ہے اس میں اس نے اتنا نرنے کر کے اور وہ بتایا تو اسے غلامی ہے. وہ ڈاکٹر خوب ہماری تپاس کر کے دانتے کروا کر اور دیکھ کر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دوائی کھانا اور یہ پرہیز کرنا, یہ مت کھانا, کھانے پینے میں ایسا مت کرنا. تو یہ میں مانتا ہوں, اس میں تمہیں غلامی کی گندھ آتی ہے. ارے بھائی ہم تو اس بات کے اسے پیسہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے. اور تم لوگ تمہیں تو وہ کہتا ہے ایک روٹی کھانا تو ایک روٹی کھاتے ہو, کہتے ہیں نہیں تمہیں غلامی کی گندھ آتی ہے. روزانہ گھر گھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھائی نہیں کھائیں گے, یہ پتنی کے غلام ہیں, جو پتنی کہہ دے گی وہی کھائیں گے. کیا وہ جو بنائے گی دوسری چیز نہیں کھائیں گے. تو کہیں ان سے پوچھو, اس سے پوچھو, ان سے پوچھیں گے کیا کھاؤ گے تو کہیں ان سے پوچھ لو, میرے ماتھا پچی مت کرو. کیوں؟ یہ غلامی ہے کہ ایک آدمی 24 گھنٹہ ہمارے حساب سے وہ بیلنس بنا کے رکھتا ہے. کیوں؟ سواستھ کے حساب سے. تو وہ ہمارے غلام ہیں اس کے. تو وہ ایسے ہی یہاں کہہ رہے کہ وہ تم کو ایسے غلامی دکھتی ہے, ہمیں تو ایسا کبھی دکھائی نہیں. تو اتنے بھگوان کی غلامی ہو گئی کہ وہ کہہ رہے کہ یہ آتما میں نہیں ہے, تو ہم نے آتما میں مانا. تو تم نے غلامی کی گند تمہیں کہاں آئی؟ یہ تو آچاریوں کا واقع ہے, ان نے اتنا چنتن کر کے ہمیں یہ بات بتائی ہے. دیکھو کہاں نکل گیا, چیتے تک چل رہا تھا نا. کیا کون سا پیج ہے بھیا؟ 17 ہے, 20 نکلا ہے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مل نہیں رہا. کرشن سمیک درشٹی کے سدھ دشا تو ہے نہیں. جب سدھ دشا نہیں ہے تو پھر 4 پرتیوں کا ابھاؤ کس اپیکشا سے بتایا ہے. اپن جو اوپر چرچا کر رہے تھے وہ کیا, کیونکہ وہاں شنکا اتپن کرنے والے متھاتو کا ابھاؤ گیا. مانے یہ نسان کے دنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے ایسی شنکا ہی نہیں ہوتی कि मेरे को मिथ्यात्व कसाय अवृत्ति और योग ये हैं मेरे में, ऐसा उसको कभी विकल्प भी नहीं आता। अपन जैसे कहीं शंका माने, यहां पर ऐसा नहीं मुझे प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, माने ऐसा मेरे को विकल्प ही खड़ा नहीं होता। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसमें मुझे शंका ही नहीं होती। अपने क्रमबद्ध पर्याय में मुझे शंका नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि 1956 में जब सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय की बात ख्याल में आई थी, तब से आज तक मेरे को सपने में भी ये शंका नहीं हुई कि कहीं ये गलत निकल गया तो फिर तो हम अपने प्रसार तो कर ही नहीं पाएंगे, इसी के भरोसे बैठे रहेंगे, ये जो होना ऐसे नक्की है। तो एक दिन भी विकल्प नहीं आया। ऐसे वो कहते हैं कि इनसे मुझे बंद होगा, मैं संसार में बंधा रहूंगा, ऐसी उसे शंका नहीं होती। तब वो कहता है तुम बार बार कहते हो कि योग नहीं है, कसाय नहीं है, अवृत नहीं है, ये तो सिद्धों के नहीं होते हैं, अयोग केवल 14वें स्थान वाले होते हैं, और तुम चौथे को बता रहे हो, योग भी तो लगा रहे साथ में। तो सम्यक दृष्टि के सिद्ध दशा तो है नहीं, जब सिद्ध दशा नहीं है तो फिर चारों प्रत्ययों का अभाव किस अपेक्षा से बताया है। अरे भाई ध्यान से सुनो, हाँ उसे सिद्ध दशा ही है। अब देखो, अब इसमें से कुछ लोग निश्चयाभासी हो जाते हैं, तो मैं कहता मैं तो अभी भी सिद्ध हो गया था, मान लेता ना। तो वो श्रद्धा की अपेक्षा ये कह रहे, क्योंकि जो बंधन अभी है वो श्रद्धा उसे स्वीकार ही नहीं करती है कि मेरे में है, वो है ना। हाँ भाई उसे सिद्ध दशा ही है, उसका आत्मा मुक्त ही है, सह मुक्त एव कलश में आता है कि नहीं आता है। सम्यक दृष्टि को तो आत्मा दृष्टि व ज्ञान में मुक्त स्वरूप ही ज्ञात होता है। सम्यक दृष्टि को आत्मा दृष्टि और ज्ञान में मुक्त स्वरूप ही ज्ञात होता है। जिसे मुक्त स्वरूप सिद्ध समान शुद्धात्मा का आश्रय होता है, उसे ही पर्याय में सिद्धता प्रकट होती है। फिर प्रश्न, ज्ञानी के अर्थात अवृत समकृति के मिथ्यात्व संबंधी भाव का अभाव होता है या चारों प्रत्ययों का अभाव हो जाता है? वो बार बार लौट लौट के उसी बात को कह रहा है ना भाई। ज्यों ही अपने त्रिकाली एक चैतन्य स्वभाव की ज्ञायक भाव की दृष्टि होती है, त्यों ही मैं कर्म के संबंध वाला हूँ, ऐसे मिथ्या भाव का अभाव हो जाता है। तथा स्वरूप में शंका उत्पन्न करने वाले चारों ही भावों का उसकी दृष्टि में अभाव हो जाता है, जिसकी श्रद्धा में शुद्ध एक गायक स्वभावी पूर्ण प्रभु आत्मा की स्वीकृति हुई, उसके वे चारों ही कर्म बंध के प्रत्यय हैं ही नहीं। ज्ञानी का स्वभाव पर दृष्टि, ज्ञानी की स्वभाव पर दृष्टि जाते ही उन सब विभाव भावों के रूप कर्म प्रत्ययों का अभाव हो जाता है, उसकी दृष्टि में वे चारों ही नहीं रहे। उसकी श्रद्धा का सिद्धे ज्ञान का ज्ञे तो एकमात्र त्रिकाली तत्व ही दृष्टिगत होता है, अतः उसकी दृष्टि में स्वरूप में शंका करने वाले चारों भावों का अभाव हो जाता है। ये सब इतना विस्तार से गुरुदेव ने लिखा है। देखो यहां कहते हैं कि भाई जिसको अपनी अल्पज्ञ पर्याय में परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की स्वीकृति हुई है, उसको उस स्वीकृति में मिथ्यात्वादि सभी का त्याग हो जाता है। देखो ये इतना आपने पढ़ लिया, डेढ़ पेज अपन पढ़ रहे थे, दो पेज पढ़ा, अब इसका अपन ने चार लाइन में लिखा, और आपके समय सार में देखो वही चार लाइन है बस, सार निष्कर्ष सारा मंथन के बाद। अब शंका खड़ी हो तो पूरा विस्तार पढ़ो, और नहीं तो सार ही लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, दोनों में है। उक्त कथन का भाव यह है कि जब ज्ञानी की दृष्टि में बंध के चारों कारणों में अपनापन नहीं रहा, तो आत्मा में तो आत्मा में तो उनका अभाव ही हो गया। कदाचित लोक में उनकी सत्ता हो भी तो ज्ञानी को उससे क्या अंतर पड़ता है। जब उसका अपनापन टूट गया है तो उसके लिए अभाव ही हो गया। उक्त प्रतिपादन की गहराई में जाने से सभी भाव हृदयंगम हो जाएगा, विहंगावलोकन से कुछ हाथ नहीं आएगा। अतः इस प्रकरण पर गहराई से चिंतन मनन करें। और ये अपने गहराई से सारी चर्चा ये की है, जयचंद छावड़ा का दिया, जयसेन का दिया, गुरुदेव श्री का दिया, ये सब ज्ञानी धर्मात्मा हो गए हैं, उनने अपनी राय व्यक्त की है। वो ये कहते हैं, देखो और कहीं तो ये बात लिखी नहीं है, सब जगह तो सरलता से उनने कह दिया जो नीचे अपन ने पढ़ा है कि भाई जिन बच में शंका न धार, जिन्हें भगवान की में शंका मत करो। और उनने कह दिया कि इसमें देवसास गुरु में शंका मत करो, किसी ने कह दिया कि अपने आत्मा में शंका मत करो, पर ये निसंग अंग है। उनने और पिछली गाथा में कह दिया सात भय, उनका नाम शंका है, सप्त भय से रहत उसका नाम निसंग अंग है। अब वो ये इसमें कह रहे चारों पायों को छेद कर जो सम्यक दृष्टि है और उसे इस बात में शंका ही नहीं है कि मैं कर्म से बंधा हूं। चौथी गाथा तो पढ़ ही रहे हो ना, भी शांति जी भी पढ़ा दी है, किसी भी में भी आ रहा है कि मैं क्या क्या बंद कथा काम भोग बंद कथा, तो उसमें मर्म की बात यह है कि काम भोग की बात तो उनने की लेकिन आगे उसे छोड़ दिया और बंद कथा को बंधाधिकार और मोक्ष अधिकार तक खींच के ले गए। अब उन्हें तीन बातें गई लेकिन फिर जो तेरहवीं का चौदहवीं गाथा में उन्होंने आत्मा कर्मों से अबद्ध स्पष्ट है यही क्यों कहा, काम भोग की बात क्यों नहीं करी, सब बंधा है कि नहीं बंधा है इस चर्चा को बंध अधिकार में ले गए, मोक्ष अधिकार में ले गए, निजराधिकार में ले गए, बंध की बात को उन्होंने मुख्य रखा। ये तो सहज भाव के तीन इन बातों में दुनिया उलझी हुई है। तो ऐसी यहां पर एक कह रहे हैं कि वो जो बंध के चार पाए हैं कौन, मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और योग, ये चारों ही पाए मैं नहीं हूं, चाहे इनके द्रव्य लगाओ चाहे भाव लगाओ, चाहे द्रव्य मिथ्यात्व कहो चाहे भाव मिथ्यात्व कहो, चाहे द्रव्य अवृत्ति कहो चाहे भाव अवृत्ति कहो, चाहे द्रव्य कषाय कहो चाहे भाव कषाय कहो, और चाहे द्रव्य योग कहो चाहे भाव योग कहो। ये द्रव्य भाव का अंतर तो समझते हैं ना, समझते ना, पर द्रव्य कषाय और भाव कषाय में क्या फर्क है, बोलो कोई हाथ उठाओ। तो अंदाजा तो लगा मुझे समझते हो कि नहीं समझते हो, कोई बात नहीं घबराना नहीं, यदि मुझे ये पता लग जाए कि नहीं समझते हो तो मैं समझाऊंगा, ये पता लग जाए कि समझते हो तो नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। पता तो लगना चाहिए, तुम्हारे चेहरों से भी कुछ पता नहीं लग रहा। ये जो क्रोध है ना, ये कसाय है, तो ये क्रोध तो अपन को जो गुस्सा आता है क्रोध नामक भाव, वो तो है भाव क्रोध है। और एक कर्म की प्रकृति है 148 में क्रोध नाम की, वो कारमान बढ़ना से बनी हुई है और वो हमारे आत्मा के साथ लगी हुई है ना, और जब वो उदय में आती है उसका आबाधा काल खत्म होता है तो उदय में आती है तब ये हमारे क्रोध नामक भाव होता है, तो उसका नाम है द्रव्य क्रोध। द्रव्य कसाय, ये भाव कसाय और द्रव्य कसाय, ऐसे भाव योग और द्रव्य योग, ऐसे भाव मिथ्यात्व और द्रव्य मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति है और वो काय कारमान वगैरह से बनी हुई है और उसका संबंध आत्मा के साथ है और उसके उदय में आत्मा में जो पर में अपनापन का भाव होता है, देह में एकत्व बुद्धि होती है, उसका नाम है भाव मिथ्यात्व। द्रव्यवृत्ति और भाववृत्ति जो बाहर से व्रत नहीं होना, जैसे अपन 11-12 व्रतों का पालन नहीं करना, तो ये हो गई दृढ़ अवृति। और अंदर में वो जिन कषायों की अप्रत्याखानावरण कषाय के कारण होती है ना, तो अप्रत्याखानावरण कषाय का होना वो भाव अवृत्ति है। ऐसे ऐसे हरेक में लगेगा। चलो, तो इस तरह से अपने समय साल में उतना ही लिखा है। अब जिसको डिटेल में जाना है वो इसमें अनुशीलन में पढ़े। यदि समय साल में भी ये सब रख देते टीका में रख सकते थे तो इसके भी 4 भाग बन जाते, इतना मोटा हो जाता। अब ये इतना मोटा पोथन में कौन पढ़े, व्यर्थ में अरुचि होती। लेकिन ये सार उसमें लिख दिया गया है। देखो, अभी इसके बाद में जो एक प्रश्न है इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। क्या है प्रश्न? कि अमृत ने प्रशासित द्विपाय में सर्वज्ञ कथित अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में यह सत्य है असत्य ऐसी शंका नहीं करने को निशांकित अंग कहा है। और आचार्य समंत भद्र ने सावकाचार में इदमेवे ईदृशमेव तत्त्वम चनान्य चान्य था, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा सन्मार्ग में संशय रहित तलवार की धार के समान अकंप रुचि को निरसंकित अंग कहा है। किंतु यहाँ सप्त भय रहित कर्मबंध करने वाले चारों पादों के अभाव को निसंकित अंग कहा जा रहा है। देखो, दोनों गाथाओं को समेट लिया। कौन कौन सी? सप्त भय से रहित माने 129वीं गाथा, 128वीं गाथा और कर्मबंध के चारों करने वाले चारों पादों का अभाव, ये हो गई 129वीं गाथा को निसंकित अंग कहा जा रहा है। इसका उत्तर यह है कि वो चरणानी योग के ग्रंथ है। चरणानी योग में बाहर बाहर की बात की जाती है और ये अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए इसमें श्रद्धा की अपेक्षा बात की जाती है ना। चरणानी योग में क्रिया की अपेक्षा बात की जाती है कि उसका बाहर में व्यवहार कैसे होगा, है ना, बाहर से कैसे दिखेगा, है ना। जैसे कि चरणानी योग में जब बात करेंगे तो कहेंगे दूसरी प्रतिमा में क्या होना चाहिए, तो कहें 12 व्रत होना चाहिए कि 12 अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचर्य व्रत, उनकी परिभाषा बताएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए बोलेंगे। और करुणानियोग वाले से कहेंगे तो वो कहेगा अप्रत्याखाना वर्ण कषाय का अभाव होना चाहिए, है ना। और फिर अध्यात्म वाले से कहेंगे तो वो क्या कहेगा कि वो तो नाप है, अप्रत्याखाना वर्ण कषाय का अभाव, आत्मा में इतनी शुद्धि की वृद्धि हो गई है कि कसाई के 2 पाए छिद गए हैं, तो जो आत्मा में वो शुद्धि प्रकट हुई है उसका नाम वो व्रत है, उसका नाम मतलब 5वां गुण स्थान है, वो ये कहेगा। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना आपको कि अपन कवियों की बताते हैं कि एक लड़की पानी की टंकी पे चढ़ गई और वहां से वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं फलां लड़के से शादी करूंगी, तुम ये सब मानो तो मैं यहां से उतरूं नहीं तो छलांग लगा के मर जाऊंगी। और नीचे पुलिस वाले आ गए, अब वो किसी की बात नहीं सुन रही है। और फिर वो कभी कहता है कि समस्या हो गई ना, अब इसे हम सुरेंद्र शर्मा से कहेंगे कि तुम इसे अपनी कविता में सुनाओ, तो वो कैसे बोलेगा, तो वो बना कविता बना के बोलता कि हे बालिके समझे ना। फिर कहेंगे इसको यदि फला कभी दूसरे कभी हमारे तुमने सुना कुंवर सिंह बेचैन, वो बोलेगा तो वो कौन सा बोलेगा कि मनहरण का वित्त बनाएगा कि वो इस तरह से इस बात को बिगड़ करेगा। तो वो जैसे अलग अलग बोलते हैं ना, एक दफे अपने यहां लड़कों ने किया था कि इस बात का प्रतिपादन यदि युगल जी करेंगे तो कैसे करेंगे, गुरुदेव करेंगे तो कैसे करेंगे, राजचंद भाई से व्याख्यान करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉक्टर भारल व्याख्यान करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसी उसने नकल की थी। गाथा एक ही है, एक ही बात को रखेंगे, लेकिन चारों के रखने की विधि अलग अलग होती ना, और उसने उतनी गहराई से उसकी स्टडी की है, इसलिए तो वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, हर एक की स्टाइल को व्यक्त कर सकता है। तो ऐसे ही यहां पर एक कह रहे कि चारों अनियोग एक ही बात को, विषांकित अंग को वो चार तरह से व्यक्त करेंगे। आपको भ्रम होगा कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब नौवां अध्याय लिखा और सम्यक दर्शन की चर्चा आरंभ की तो उसने क्या किया, उसमें लिखा ना देवसार गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, फिर दूसरा लिखा कि सात तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, फिर आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, स्वानुभूति को सम्यक दर्शन कहते हैं, लिखा ना, वो चार चार परिभाषाएं दी और फिर एक कहा इनकी क्या अपेक्षा है। वास्तव में वो चार अनियोगों के अलग अलग कथन है, जो ग्रंथों के नाम पेश किए वे अलग अलग अनियोग के ग्रंथ हैं। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आपतागम तपोघताम त्रिमूणा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। अब देखो सतंग साहब का तार है तो सत्य देव साज गुरु की श्रद्धा को बोला, तो ये बात सही है कि गलत है, सही कहा है, माने वो जो उनने आचरण रूप बात बताई, और बात सही इस अर्थ में ही है कि हमको आत्मा का स्वरूप देव शास्त्र और गुरु इन तीनों से ही तो पता चलेगा, देव में किनको लेना, बोलो अरहंत सिद्ध को लेना कि नहीं, सिद्ध देव तो हैं पर आप्त नहीं है, आप्त में और देव में अंतर क्या है जानते हो, जो सबका तार में है आपतागम तपोवृत, आप्त लिखा देव नहीं लिखा, देव सास गुरु नहीं लिखा, हम लिख देते हैं उसके अनुवाद में देव सास गुरु, उन्होंने क्या लिखा संत जी आप्त आगम और तपोवृत माने गुरु, तो आप्त लिखा, तो आप्त में क्या फर्क है उत्तम देव में, ये हितोपदेशी बना नहीं होता है देव में, सिद्ध भगवान में हितोपदेशी बना नहीं है, अरहंत भगवान में हितोपदेशी बना है, और भाग्या मुख्य रूप से तीर्थंकर अरहंत को लेते हैं, वो अरहंत का भी उपदेश होता है तो वे गुरु हो गए ना देश नलब्धि में, और जिनवाणी से भी हम वो काम कर सकते हैं तो वो भी हो गई, और गुरु भी हमें समझाते हैं, वो त्रिकाली द्रव भगवान आत्मा जो है वे देव सास गुरु ही तो समझाएंगे, वो पहले देश में लब्धि में सम्यक दर्शन को आत्मा समझेगा तब तो अनुभूति में जाएगा, देश में लब्धि के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता ना, उसने इसको लिया। अब उन्हें तत्वासूत में गए तो तत्वा सिद्धानंद सम्यक दर्शन, ये तीनों ही गा गई है देव सास गुरु, तो इनमें क्या फर्क हुआ, उनने कहा ये देव सास गुरु जो बात समझाएंगे वो समझोगे तब सम्यक दर्शन होगा ना, तो वे क्या समझाते हैं तत्व, तो उन दोनों ने क्या, उनने वो समझाने वाले को पकड़ा और इनने जो समझाए उस विषय को पकड़ा, कि तुम्हें समय सार शांति जी पढ़ाएंगे नहीं तो कौन वो पढ़ाएगा क्या नाम संजीव, अब वो एक दफे पढ़ाने वाले को पकड़ा एक दफे सब्जेक्ट को पकड़ा, इतना ही तो फर्क है ना, बात तो वही रही ना, कि तुम देव तत्वार्थ को समझोगे तो सम्मा दर्शन होगा, अब वो गलत तो दोनों नहीं रही, दोनों की संधि बैठी ना कि देव सार गुरु समझाएंगे तत्वार्थ को समझाएंगे क्या तो हमें सम्मा दर्शन होगा, तो उनने देव सार गुरु को पकड़ लिया, इनने तत्वार्थ को पकड़ लिया, तो उनने की क्या समझाएंगे तत्वार्थ में, तत्व सात होते हैं और फिर ये एक कौन तत्वास्तु समझाएगा, फिर समय सार कहेगा कि उसमें जो जीव तत्व है वो ही महान है, वो ही तू है। क्या नव तत्वों में छुपी ही जो आत्मज्योति है ना, वो आत्मज्योति, वो आत्मज्योति तू है, उसका दर्शन उसने अपनापन करेगा, उसकी अनुभूति करेगा तो सम्मय दर्शन होगा। तो उनने भी वही बात कही, सात तत्व बताने पड़ेंगे तब उनमें से छुपी हुई वह ज्योति निकलेगी, सात नहीं बताएंगे तो उनसे भिन्न ज्योति किन से भिन्न ये नहीं बताए कैसे बताएंगे। तो उनने भी वही बात कही कि वो चीज आएंगी, तो उन्हें कहा आत्मानुभूति सम्मय दर्शन है। फिर वो कही कि भैया आत्मानुभूति सम्मय दर्शन होता तो आत्मानुभूति चली जाती है तो सम्मय दर्शन चला जाना चाहिए, लेकिन सम्मय दर्शन जाता नहीं है तो आत्मानुभूति चली जाती है, इसलिए जो अत्रकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन स्थापित हुआ श्रद्धा के लेवल पर उसका नाम सम्मय दर्शन है, क्योंकि सम्मय दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। बोलो अभी चार बातें कही, अभी चारों स्थितियां सही है ना, उनमें से गुजर के आना ही पड़ेगा ना, गलत तो कोई नहीं है ना, लेकिन चार अनुयोगों की मुख्यता से इस तरह से अलग अलग बात होती है। यदि सम्मय दर्शन का समझाना हो, चौथा गुणस्थान समझाना हो, अन्ना जी को बैठा दो तो वे बताएंगे कि दर्शन मोह की जो तीन प्रकृतियां हैं और उनका क्षय होना, क्षय उपशम होना, उपशम होना क्या क्या सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय रहेगा तो सम्मय दर्शन सर्वोपम सम्मय दर्शन होगा। तो देव कर्म प्रकृतियों से समझाएंगे, क्योंकि कर्मान योग का उसी हिसाब से बात करता है, क्या क्या घटित होगा, मतलब तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो सब्जेक्ट तो जो लेगा उसे वही बताना पड़ेगा। यदि मान लो कि मैं भी समझाऊंगा क्या गुणस्थान को, अथयोपम सम्मय दर्शन को, तो मैं भी वैसे ही समझाऊंगा, ये विभिन्न अपेक्षाओं से कथन है। तो ये इन्होंने बता दिया कतंगा सप्ताह में प्रशासित उपाय में। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रशासित उपाय अमृतचंद्र ने लिखा, अमृतचंद्र ने जो टीका लिखी, अब उन दोनों में ही अंतर आ गया। तो वो तो विषय का अंतर है ना, हम चरणन योग पढ़ाने बैठेंगे तो वो बात करेंगे, समय सार पढ़ाने बैठेंगे तो वो बात करेंगे, इसमें विरोध की बात कहां होगी कि सुबह ऐसा कहते हैं और शाम को ऐसा कहते हैं। अब एक हमने विषय सुबह लिया, एक लिया शाम को, तो वहां वो आएगा वहां वो आएगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब निकांक्षित अंग की गाथा पढ़ो।
सोरे कम घोचेदा संहारिष्ठि मुणे सको सब धर्म एवं सफल की सागरे आकांक्षा ते आत्मानी कांच्य संग करती है यह जानना।
ये जो कांक्षा बताया था ना, इच्छा और कांक्षा में अंतर, इच्छा है वो चारित्र का दोष है, वो कसाय भाव है, वो कांक्षा है वो श्रद्धा का दोष है ना, अकेला चाहना है इच्छा तो, और इनमें सुख है ऐसी बुद्धि पूर्वक चाहना उसका नाम कांक्षा है। इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा पांच इंद्रिय के भोगों से, उसका नाम कांक्षा है। तो कहते हैं जो न करे दी कंखम, जो कांक्षा नहीं करता है कि काय की नहीं करता है कि कम फलेशु कर्मों का फल, कर्म मुझे पुण्य कर्म का उदय में अच्छे अच्छे भोग मिले, मैंने ऐसी कांक्षा, अब कर्म फल की तरफ से बात कर रहे हैं, मैंने कहते भोगों की कांक्षा नहीं करे, पांच इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं माने, ऐसा कह सकते थे। अब यहां उन्होंने कर्म के फल में कहा, अभी एक एक गाथा में एक एक बात कुछ नई आ जाती है जो जो झगड़ा पैदा करती है अथवा समझने के लिए ज्यादा समझने के लिए प्रेरित करती है। क्या लगा देखो काय में सब धम्म सभ्य धम्मेशु। अब एक तो कर्म फल लिख दिया मैंने भोगों की आकांक्षा, अब दूसरा गया सब धर्मों की आकांक्षा। अब सब धर्म क्या है ये? अब इनमें सब अलग 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 अमृतचंद क्या कहते हैं, जयसेन क्या कहते हैं, जयचंद क्या कहते हैं, कान्ही स्वामी क्या कहते हैं, सारा झगड़ा खड़ा हो गया। सब धम्मेशु, अब सब धर्मों की आकांक्षा नहीं करे। तो अमृतचंद ने टीका लिखी तो उन्होंने वस्तु धर्मों कर दिया, नहीं तो हम कह देते सब धर्मों के, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ऐसा कह देते। नहीं तो हम आत्मा में नित्यत्व अनित्व एकत्व अनेकत्व धर्म कह देते। ठीक है, उनने वस्तु धर्मो ऐसा कर दिया। अब और जरा बात हो गई व्यक्ति खोल के रह गए, बस बुद्ध ज्यादा है उनने कही नहीं कि कर्म के फलों में और सब वस्तु के धर्मों में की आकांक्षा नहीं करे वो निकांक्षित सम्यक दृष्टि जानना। अब देखो पढ़ते हैं फिर अभी नीचे ये सारा झगड़ा इसमें खड़ा हुआ है। इसमें उसमें गाथा में तो इतनी सी बात है जो अपन ने अर्थ पढ़ लिया, जो कर्म बंधन वो तो हो गया। सब धर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा वे आत्मा निकांत सम्यक दृष्टि है यह जानना। सब धर्म लिखा ना, सब धर्म और कर्म फल। अब सब मूल में तो सब धर्म लिखा है, अब धर्म का क्या अर्थ है ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। इसलिए अमृतचंद की जरूरत है, इसलिए जयसेन की जरूरत है। हम तो क्या कहते सब धर्म क्या कहना चाहते हैं है? आकांक्षा में तो अपन तो हर जगह वही वही बात करते हैं। देखो छडाला में क्या लिखा है, निर्विक चिकित्सा के बारे में बताता हूँ थोड़ा नमूना कैसे मतलब के मुनि मुनि तन मलिन न देख घृणा है कि मुनि के मैले शरीर को देखकर घृणा नहीं करे। क्यों कि जब स्नान व्रत है उनके अदंत धोबन व्रत है तो दांतों में मैल लगा होगा, शरीर में मैल लगा होगा। तो भाई अपने बच्चे का कितना गंदा है, कितना अंडा नहाता ही नहीं है, दांत नहीं करता है, अपन तो कितना माने नहीं है? उसको अब मुनिराज नहीं करते उनका है, उनसे गिलानी नहीं करें। अब हमको ये हो गया हमारे लिए कौन सा निर्विचिकित्सा अंग। अब न मुनि नहीं है, पंचम काल में हमने मुनि के दर्शन ही नहीं किए तो फिर हमारा निसंग दंग है कि नहीं है। अब फिर कोई मुनि होना चाहिए गंदा उसका शरीर हो और फिर हम उसे गिलानी नहीं करें। और एकदम बाहर जैसी बात हो गई ना, उन्होंने इतनी कह दी बस गिलानी नहीं करना। अब फिर आगे बढ़े साहब का दार क्या कहता है बोलो। स्वभाव तो असुचि काया, काया तो स्वभाव से ही अपवित्र है। तो मतलब काया से गिलानी नहीं कर, गिलानी नहीं करना। अभी तो गिलानी कराते हैं वो बोलते हैं ना, नव द्वार बहे घिनकारी इस देह करे कमियारी। अब उसी में रहना है दिन रात, उसी जेल में रहना है, कितनी गंदी हो जैसी हो तो हो, है ना। तो उनने क्या कह दी, वो तो स्वभाव से ही ऐसी चीज है, उसे क्या करना। अब अमृत चंदाचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा लिख दिया, द्रव्येषु पुरीषादिषु। क्या है पुरीष जानते किसे बोलते हैं, इसमें लेटन जाते हो नहीं, जो डिस्चार्ज करके जाते हो उसका नाम है पुरीष। उसमें गिलानी नहीं करे ऐसा लिखा, और वस्तु धर्म में भी लिखा पूरा छंद बोलना, आत्मा के विकारी भावों में और पुरीष आदि द्रव्यों में गिलानी नहीं करे। तो वो आत्मा के विकारी भाव मन क्रोध मान माया लोग से गिलानी नहीं करे, हमें ये लिख दिया। अब यहां देखेंगे आगे गाथा पढ़ेंगे तब कुंद कुंद क्या लिखते हैं। तो ये जो विभिन्न अपेक्षाएं हैं ना, उन सब अपेक्षाओं को हमें समझना है और उनमें कोई मतभेद नहीं है, अंतर नहीं है। अपने अपनी दृष्टिकोण माने अपना अपना नहीं, अनियोगों का दृष्टिकोण है वो। प्रथमानियोग चरणानियोग का इसका उसका उसका सब दृष्टिकोण है, ख्याल में है ना। अब यहां तो कह रहे हैं सभ्य धर्मेशु का कहां कहां क्या अर्थ किया है, सुनो आप। इस गाथा का भाव आत्मख्याति टीका में आचार्य अमरचंद निसंकित अंग के समान ही अति संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। शब्दावली भी बहुत कुछ निसंकित अंग के समान ही है, बिल्कुल वैसी की वैसी, पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। आत्मख्याति का कथन मूलतः इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण, अब जो सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमय होने के कारण ये निसंकित अंग में भी होगा और निकांक्षित में भी, मन में क्या हु बहु अर्थ करा, आधा तो उन्होंने कुछ गड़बड़ी नहीं करी, वही की वही पंक्ति उठा के रख दी। अब बदला क्या है कि किस सभी कर्म फलों में और वस्तु धर्म, अब वहां तो था धर्म और यहां उनने कर दिया वस्तु धर्म, अब इससे वो जैन धर्म वगैरह हट गए। वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निकांक्षित अंग है, कांक्षा माने कि उनसे मेरा भला होगा ऐसी मान्यता, इसलिए उन्हें कांक्षाकृत बंध नहीं होता किंतु निर्जरा ही होती है, इसलिए उन्हें शंकाकृत बंध नहीं होता अपितु निर्जरा ही होती है, ये भी वाक्य वैसा ही है, कांक्षाकृत बंध नहीं होता अपितु निर्जरा ही होती है, तो अंतिम लेन भी एक सी पहली की लेने थोड़ी सी बीच में बदल दी, वे तो हिलना नहीं, हिलना डुलना नहीं चाहते क्या? वे अपनी बस उतनी उस एक एक पंक्ति का भी अर्थ नहीं कर, जो शब्द आए उनका भी अर्थ नहीं करना चाहते। अब इस गाथा में सम्य दृष्टि जीव को कर्म फलों के साथ साथ सर्व धर्मों के प्रति निर्वांछक बताया गया है, तथा गाथा में समागत धर्म शब्द का स्पष्टीकरण आत्मख्याति में वस्तु धर्म कहकर किया है। तो अमृतचंद्र तो निबट गए। अब यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या धर्म की अथवा वस्तु धर्म की कांक्षा होना भी दोष है? वस्तु धर्म की होने की कांक्षा में कहां दोष है जी, है ना? तात्पर्य यह है कि धर्म की कांक्षा होना तो गुण होना चाहिए, दोष नहीं। प्रश्न मूलतः यह है कि यहां धर्म या वस्तु धर्म शब्द से क्या अभिप्राय अपेक्षित है? धर्म से निर्वांछक होने का आशय क्या है? धर्म की भी कांक्षा नहीं करना, ये बात कहां से लाए? भोगों की कांक्षा नहीं करना, कर्म फल माने भोग, वो तो समझ में आती थी, अब वस्तु धर्मों की भी कांक्षा नहीं करना, इससे क्या कहना चाहते हैं? अब पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में तात्पर्य वृत्ति के अभिप्राय को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है। मैंने पहले कह दिया कि जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ हैं उसमें ज्यादातर वो बातें हैं जो बातें जैसे ना चारी की टीका में हैं पर आत्मख्याति में नहीं। आप उठा के देख लेना, अरे ऐसा निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं है। जब हम जयचंद की पढ़ते जब जयचंद की पढ़ जाते हैं, जयचंद की पढ़ते जब जयचंद की पढ़ जाते हैं, हम आत्मख्याति पढ़ते जब आत्मख्याति पढ़ जाते हैं, हम तो देखते ही नहीं है उस बात को, तो पता ही नहीं चलता है। सुनो क्या कहते हैं अब इनके दो, इसमें दो आ गए, कौन कौन? जयचंद और जयसेन, सेन और चंद का ही फर्क है। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की बांछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की बांछा नहीं होती। अब देखो अब अर्थ करते धर्म का अर्थ, सुनो, सुवर्णत्व पाषाणत्व ये है धर्म का अर्थ। समस्त वस्तु धर्म है ना, तो वो पुद्गल वस्तु है ना, और उसमें सोना एक वस्तु है ना, उसका सुवर्णत्व है धर्म है? पाषाण का पाषाणत्व है धर्म, समझ गए ना? इत्यादि की निंदा प्रशंसा आदि वचन, ये वचनों में निंदा के वचन प्रशंसा इत्यादि, बस इनका नाम है वस्तु धर्म। वचनों में निंदा प्रशंसा और उसमें पाषाणत्व और सुवर्णत्व, अर्थात पुद्गल स्वभावों की उन्हें उसे वांछा नहीं है और उनके प्रति संभाव है। एक अर्थ उन्होंने ये किया वस्तु धर्म का, अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांतवादी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है। वो धर्म भी ले लिए उनने अन्य मतों के द्वारा माने गए। अब उनने तो मूल में से धर्म लिखा था, किन्ने कुंद ने समझ नहीं आया। एक जगह एक बड़े आचार्य ने कहा था कि कुंद की गाथाएं तो बिल्कुल सरल हैं, अमृत चंद्र ने उनको दुरूह कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं हमारे वैसे धर्म का क्या अर्थ है हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो वो काय की सरल है। अब उसको कोई खोलेगा ना, यदि टीका इसके इतना है, अनुवाद और टीका में क्या फर्क है, समझ नहीं आई। अब देख समझो तुम क्या हम उस बात को बस वस्तु धर्म का आज नीचे वस्तु धर्म लिख देवे तो उसका नाम है अनुवाद, मक्खी की मक्खी मानना, बस संस्कृत से हिंदी कर दी बस खत्म, इसका नाम है अनुवाद। अब इस पर विचार करके उसका निष्कर्ष निकाल के प्रस्तुत करना, आगे पीछे और आचार्यों ने क्या कहा, इसका नाम है टीका, समझिए ना। और फिर वो टिप्पणी होती है, टीका टिप्पणी बोलते हैं कि वो बहुत टीका टिप्पणी करता है, तो नीचे वो लिखी जाती है ना टिप्पणी, कि ये बात का अर्थ हमें समझते, नीचे अपनी तरफ से खुलासा कर दिया, ऊपर कुछ नहीं किया और निशान लगा के नीचे लिख देते हैं उसे टिप्पणी, टिप्पणी लिखो संक्षेप में करना। देखो संक्षेप में उसका अर्थ करना वो वृत्ति, फिर उसको तर्क युक्ति से सिद्ध करना उसका नाम वार्तिक, फिर उसको और उदाहरण दे दे करके और परमतों की बात ला करके और सिद्ध करना उसका नाम भाष्य। कहते हैं सर्वार सिद्धि है वृत्ति, राज वार्तिक है वार्तिक, श्लोक वार्तिक है वार्तिक, और समंत भद्र ने लिखा था गंध हस्ती महाभाष्य। हम लोग अनुशीलन क्या होता है, अनुशीलन क्या होता है, तो मैं अनुशीलन ये होता है तो चारों तरफ से लेकर खूब धो धो के अच्छी तरह से पिंच के कोट के करके सुखा दिया, साफ कर दी, निकाला यहां क्या कहा वहां क्या कहा, सब जगह से देख दाख करके फिर तो उनकी संधि बैठाल करके किसने क्या अर्थ किया है ये सब बताना, इसका नाम है अनुशीलन, समझिए ना। हमने प्रशिक्षण शिविर लगाए तो किसी ने देखे तो नहीं, लेकिन प्रशिक्षण शिविरों की बहुत लोकप्रियता हुई तो उनने भी प्रशिक्षण शिविर लगाना शुरू कर दिए। अब उसमें कुछ नहीं, बस भाषण होते हो कुछ नहीं, ये पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं होती जो अपन पढ़ाते हैं ना बच्चों को, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं, पर ऐसे आप बुलाए भाषण, और एक उनका कुलपति बना दिया एक बड़े विद्वान को बैठा करके, और इस तरह से उनने सब विश्वविद्यालय जैसा बन के चार तीन दिन का शिविर कर दिया और बस सब भाषणबाजी। अरे भाई एक दफे नकल करने थी तो देख तो जाते भले आदमी कि हमारा प्रशिक्षण का मतलब क्या है, क्या करते हैं हम उसमें, है ना। ऐसे भी लोग समझते हैं कि तो हमने इनने लिखी है टीका हम भी लिख देंगे, हम उसको देख समझते नहीं उसमें क्या क्या होना चाहिए है? अब तक का उपलब्ध तत्संबंधी जो भी साहित्य है उनको अच्छी तरह पढ़कर और सारे एंगलों को स्पष्ट करते हुए बात को स्पष्ट करना, उसका नाम है अनुशीलन। अब मैंने कहा बारह भावना एक अनुशीलन, उसमें क्या है कि आज तक जितनी भी बारह भावनाएं लिखी गई तो सब भावना तो एक ही लाइन पर चलती है ना, कि राजा राणा मर गए विवे कहेंगे, सेठिया मर गए विवे कहेंगे, जनता मर गई देखिए सब मर गए हाय राम हाय राम, पर उसी को अनित्य भावना कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक लेन पे चलती है असन भावना अनित्य भावना। अब कोई ने किसी दूसरे तरीके से इस बात को कहा हो तो वो एंगल को पकड़ना, तो किसी ने तीसरे तरीके से कहा हो तो उस एंगल को पकड़ना, جیسے کہ بہت ہی درلب. تو ایک کہتا ہے کہ بھائی نرک سے نکلنا کٹھن ہے, نبوت سے نکلنا کٹھن ہے, تش پر آ پانا کٹھن ہے, پھر ایک منس ہونا کٹھن ہے, پھر یہ ہونا کٹھن ہے, ایسے گناتا جاتا ہے. ایک گناتا ہے کہ دیکھو جو سمندر میں وہ پڑا ہو اس میں سے چنتامنی رتن ملنا وہ بہت کٹھن ہے, بہت ہی درلب ہے, یہ درلبتا بتاتا جاتا ہے. اب دوسرا کہتا ہے بودھ ہی آپ کا ابھاو ہے, نشچے درلبھ نہیں ہے نا, جگ میں پراپتی کٹھن ہے, اے ویوہار کہتا ہے ویوہار ہے کہتے ہیں. تو دوسرا اینگل ملا نا, وہ درلبھ نہیں ہے, بھاونا ہے بودھ ہی درلبھ. وہ بتا رہا ہے بودھ ہی سلبھ ہے. دیکھا, تو یہ دوسرا اینگل ہوا تو دو چیزیں پکڑ لی. اب تیسرا اینگل ملے گا تو اسے پکڑیں گے اور پھر ان تینوں کی تلنا کریں گے, پھر کیا چیز ہے سمجھ میں آئی نا. تو یہ اس کا نام ان سے دو ہزار برس میں سب پڑھی, ان میں سے وہ کتنی کتنی بھنتا ہے ان کو نکال کے رکھی. تو وہاں تو ہم دو ہی بھاونا رکھیں گے نا, لیکن پھر دو بھاونا کیسے نکلی ہیں آپ کو پتا نہیں. سو پڑھی جب دو نکلی ہیں, سو پڑھی اور دو دکھی ہیں, کیا تو دکا. دیکھیے راجا رانا چھترپتی ہے, اب جیتن کی بھاونا پڑھو, کیا ہے بولا انت بھاونا. اب وہ کہتے ہیں تم کیا کو رو رہے ہو, سب مر جائیں گے مر جائیں گے, یہ بات ہی نہیں کرتے ہو. راجا مر گئے یہ مر گئے, کیا ہی مرنے کی بات ہے. کہتے ہیں درب درشتی سے کوئی مرتا پھرتا نہیں ہے, ساری وستویں استھر ہیں. اب بھاونا تو انت ہے اور بتا رہے تھے نت کہ تو نت ہے, درب درشتی سے سروت ہے اور پریا تھے, پریا کی اپیکشا کون استھر ہوا ہے. یہ سب آئے ہیں تو ہوتے ہی سوبھاؤ ہے سہج ہے بدلنا, اس لیے تم پریا نئے کو گوڑ کر کے درب درشتی کرو, ایک نیا درشتی کون ہے نا. تو ہم نے وہ بھاونا ہٹا کر اپنے کائے میں بال بھوت پاٹوں میں یہ بھاونا رکھی. دوسرا دشٹیکون تھا نا تارا چند جی, تو بڑے بڑے پنڈتوں نے بھی پھول چند جی نے بھی ورودھ کیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ سب کو کنٹھست ہے راجا رانا, وہی رکھنا چاہیے یہ نہیں رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا سب کو کنٹھست ہے کیونکہ وہ بال بھوت پاٹ مالا میں پڑھائی جاتی ہے, بچوں کو پڑھا دے گی تو کنٹسٹ ہے, اب یہ پڑھائی جائے گی تو یہ کنٹسٹ ہو جائے گی. یہ کوئی ترک نہیں ہے کہ وہ پرچلت ہے اس لیے اسی کو رکھو. آپ اسے ہٹانا چاہتے, ہم کاہے کو ہٹانا چاہتے, ہم ہٹانے والے کون ہوتے ہیں, ان بھاگوں میں بھی یہی ہے, ہم اپنے بھاگوں میں یہ نہیں رکھ رہے, یہ بھی پرچلت ہو جائے گی. کیوں, کون سمجھے گا اسے, بچے سمجھیں گے ہم سمجھائیں گے. تو وہ چیز چھپی رہ جاتا, آدمی کر بدل نہیں جاتا. ہم نے وہ چیز لا کے رکھی اس میں, اب دونوں اپنے سامنے بیدار کر لو, ایک دشٹی کون یہ بھی ہے ایک دشٹی کون یہ بھی ہے. ابھی بارہ ہی بھاونا پڑھنا جائے تن جی کی تو اب بالکل نیا دشٹی کون ملے گا. اب جیسے ہو جاتا جیسے دیتے, اب بھوجا داس سے تو ادھک ودوان ہے نا جیتن, اب جو انہیں سمے سار کے ٹیکا کا. اور بھوجا داس نے کہا یہ لکھا پارس پران سمجھا. چلو کہاں تک کیا پڑھ رہے تھے اپن, پیج نمبر بتاؤ جلدی. ہاں یہاں ایک پرشن اپستھت ہوتا ہے कि क्या धर्म की अथवा वस्तु धर्म की कांक्षा होना भी दोष है. तात्पर्य यह है कि धर्म की कांक्षा होना तो गुण होना चाहिए दोष नहीं. प्रश्न मूलतः यह है कि यहां धर्म या वस्तु धर्म शब्द से क्या अभिप्राय अपेक्षित है, धर्म से निर्माक्ष होने का आशय क्या है. तो छावड़ा जी का अभिप्राय अपन पढ़ रहे थे, है ना, हो गया ना एक घंटा, कितना हुआ मुझे पता नहीं है, क्यों कितने मिनट हुए, دو رہے گئے منٹ باقی.